तारीख 24 मई दिन रविवार, दिनभर के साथ मैं निखिल रंजन। मलेशिया में मिले सामूहिक कब्रों में दबे हैं 100 से ज्यादा शव। रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी हो सकते हैं मारे गए लोग। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से मांगा चरमपंथ को मिटाने पर सहयोग।
आतंकवाद को रोकने में वो पूरी तरह से मदद करें, क्योंकि आज पाकिस्तान को भी उसी आतंकवाद के संकट से गुजरना पड़ रहा है।
संडे दिनभर में आज मुलाकात किरण बेदी से, चर्चा होगी विस्तार से राजनीति पर।
कोई भी एक इशू निकल रहा है, छोटा है या बड़ा है, उसको ऐसे हम लोग उभार रहे हैं कि हर चीज को रोक ली जाए। मैं या तुम की राजनीति हो रही है, इस वक्त हम की राजनीति नहीं हो रही।
सुनेंगे खबरें खेल की भी, लेकिन पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, फैसल मोहम्मद अली से। मलेशिया में बहुत सारी सामूहिक कब्रें मिली हैं, जिनके बारे में समझा जा रहा है कि ये बांग्लादेश और म्यांमार से भागे हुए लोगों की हो सकती हैं। ये कब्रें मलेशिया और थाईलैंड की सीमा के करीब वैसे इलाकों में मिली हैं जहां मानव तस्कर अस्थायी कैंप लगाते हैं। इस माह के शुरुआत में इसी तरह की कब्र दक्षिणी थाईलैंड में भी मिली थी। चंद दिनों पहले अंडमान सागर से सैकड़ों अप्रवासियों को बचाया गया है, हालांकि अभी भी नौका में सवार सैकड़ों लोग इसी तरह से बह रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख सीना ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि वो मानव तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करें। इथोपिया में लाखों वोटर आम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। देश के लंबे समय तक नेता रहे मेलू जेनावी की मौत के बाद ये पहला चुनाव है। राजधानी एडिस अबाबा में मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि वर्तमान प्रधानमंत्री हेल मरियम डेसालेन की भारी मतों से जीत होने की उम्मीद की जा रही है। उनका दल इथोपियन पीपुल्स रिवोल्यूशनरी फ्रंट 1991 से ही सत्ता में है, लेकिन विपक्ष के एक नेता मेद्रेक बेकल नागाम का कहना है,
In so many village areas, our people are being harassed.
बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है और हमारे प्रतिनिधियों को खदेड़ दिया जा रहा है। उन्हें सत्ता पक्ष को वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चुनाव अधिकारियों ने उन जगहों को छोड़ दिया है जिसकी जगह EPRDF के लोगों ने ले ली है, इथोपिया के एक विपक्षी नेता के शब्द। हालांकि सरकार ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। सऊदी अरब में अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि दो दिनों पहले एक शिया मस्जिद में हुए धमाके को इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने अंजाम दिया था। मुल्क के पूर्वी प्रांत में हुए हमले में 21 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी जिम्मेदारी बाद में IS ने ली थी। संगठन शियाओं को काफिर मानता है। सऊदी अरब के अंदर यह हमला उस समय हुआ है जब वो यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहा है। एक अधिकारी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के इंस्पेक्टर को वो ईरान अपने फौजी ठिकानों पर जाने देने को तैयार हो गया है। ईरानी टीवी ने उप विदेश मंत्री अब्बास अराकची के हवाले से कहा है कि ये समझौते का हिस्सा है जो अमेरिका और विश्व के दूसरे अहम मुल्कों के साथ ईरान ने किया है। पश्चिमी देश ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं। अब तक ईरान के कट्टर गुटों ने फौजी ठिकानों की निरीक्षण का विरोध किया है। अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में तालिबान लड़ाकों ने सुरक्षा चौकियों पर हमला किए हैं, जिसमें 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि हेलमंद सूबे में बहुत सारे चरमपंथियों ने एक साथ हमला किया और सुरक्षा बलों और उनके बीच अभी भी लड़ाई जारी है। अफगानिस्तान में पुलिस चौकियों पर अक्सर हमले होते हैं क्योंकि वहाँ इंतजाम अभी भी कमजोर है। BBC समाचार।
BBC रेडियो पर दिनभर के श्रोताओं को निखिल का नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है उनका भी जो हमें bbchindi.com और मोबाइल पर सुन रहे हैं। भारत में लोग इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। मौसम की गर्मी तो है ही, केंद्र और राज्य सरकारों के कामकाज के आकलन और आपसी टकराव ने भी दिल्ली की गर्मी काफी बढ़ा दी है। उधर आज तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक की नेता जे जयललिता ने सचिवालय में पहुंचकर काम शुरू कर दिया। दिनभर में आज चर्चा होगी बारी बारी से आम आदमी पार्टी की सरकार के 100 दिन और मोदी सरकार के काम के एक साल के काम की, लेकिन शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से करते हैं जो आ रही है मलेशिया से। मलेशिया की पुलिस ने कहा है कि थाईलैंड की सीमा के पास इंसानों की तस्करी के लिए प्रयोग में लाए जा रहे शिविर के नज़दीक सामूहिक कब्रें बरामद हुई हैं। इन कब्रों में 100 से ज्यादा शव मिले हैं। ये शव गैर कानूनी ढंग से आ रहे प्रवासियों के बताए जा रहे हैं। मलेशिया के गृह मंत्री शाहिद हमीदी ने कहा है कि ये बात हैरान करने वाली है कि ये शिविर यहाँ 5 साल से ज्यादा पुराने हो सकते हैं। इसी महीने में दक्षिणी थाईलैंड के पास ऐसी सामूहिक कब्रें मिली थी। म्यांमार और बांग्लादेश से आ रहे प्रवासियों को अंडमान समुद्र के पास से बचाया गया था, परंतु उम्मीद है कि अभी भी हजारों प्रवासी नावों में इधर उधर तैर रहे हैं। पूरे ब्यौरे के साथ वैभव श्रीवास्तव।
मलेशिया के अधिकारियों ने कहा है कि मलेशिया में ऐसी कई सामूहिक कब्रें बरामद हुई हैं जिनमें प्रवासियों के शव मिले हैं। गृह मंत्री शाहिद हामिदी ने कहा कि थाईलैंड की सीमा के पास ऐसी कब्रें 17 जगहों पर मिली हैं। ये वो जगह हैं जिन्हें इंसानी तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें ये बात मालूम नहीं कि कितने शव बरामद किए गए हैं। ये सभी शव उस समुद्री रास्ते से बरामद हुए हैं जिस रास्ते से रोहिंग्या मुसलमानों को तस्करी द्वारा थाईलैंड ले जाया जाता था। पिछले कई वर्षों से म्यांमार में हो रहे अत्याचारों से बचने के लिए रोहिंग्या मुसलमान तस्करी कर रहे लोगों की मदद से म्यांमार से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। थाईलैंड की पुलिस ने तस्करी करने वाले समूहों पर सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। गृह मंत्री शाहिद हामिदी ने पुलिस कार्यवाही के बारे में बताते हुए कहा,
hari ini ketua polis negara dan timbalan ketua polis negara sedang berada di sempadan।
आज पुलिस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थाईलैंड और मलेशिया की सीमा के पास मिली सामूहिक कब्रों की जांच करने गए हैं। माना जा रहा है कि ये कब्र उन प्रवासियों की हैं जो इंसानी तस्करी की गतिविधियों से जुड़े हुए थे। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि केवल एक जगह नहीं परंतु ऐसी कब्रों के शिविर कई जगहों पर मौजूद हैं।
Dan di samping itu terdapat 14 buah kem yang besar ataupun kemah sementara।
हमें मलेशिया और थाईलैंड की सीमा के पास इंसानी तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इलाकों में ऐसे 14 शिविर मिले हैं जिनका बहिष्कार कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 14 बड़े और 3 छोटे शिविर इंसानी तस्करी के लिए प्रयोग में लाए जा रहे थे। गृह मंत्री शाहिद हामिदी के शब्द। बीबीसी के जोनाथन हेड द्वारा की गई जांच के मुताबिक थाईलैंड में ऐसे कई समूह हैं जो इंसानी तस्करी में मदद कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये समूह बाकी प्रवासियों को तस्करी की मदद से एक जगह पर लाते हैं और उनके परिवारों से फिरौती की रकम मिलने तक बंधी बनाकर रखते हैं। ऐसे ही कई प्रवासियों की भुखमरी या बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। थाईलैंड के जरिए हजारों लोगों को तस्करी के माध्यम से मलेशिया में प्रवेश मिलता है। मलेशिया के अखबारों की माने तो हाल ही में मिली कब्रें मलेशिया के पदांग बेसर और वांग केलियन इलाकों से बरामद हुई हैं। मलेशिया के उतुसुन अखबार ने कहा है कि कई मानव कंकाल लगभग 30 सामूहिक कब्रों से मिले हैं। वहीं स्टार अखबार ने कहा कि बरामद किए गए शवों में करीब 100 शव रोहिंग्या मुसलमानों के हैं। बांग्लादेश और म्यांमार से आ रहे हजारों रोहिंग्या प्रवासी नावों पर फंसे हुए हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया ने प्रवासी नावों को ढूंढने का कार्य शुरू कर दिया है। जहां एक ओर मलेशिया और इंडोनेशिया ने कहा है कि ये दोनों ही अस्थायी रूप से प्रवासियों की मदद करेंगे, वहीं दूसरी ओर थाईलैंड ने कहा है कि वो केवल प्रवासियों को ला रही नावों को अस्वीकार करना रोक देगा।
थाईलैंड की सीमा के पास मिले सामूहिक कब्रों के बारे में बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुना रहे थे वैभव श्रीवास्तव।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
और अब बात भारत और पाकिस्तान की, जिनके बीच में चरमपंथ के मुद्दे पर एक बार फिर तूतू में शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है भारत के मंत्रियों के बयान पर, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पाकिस्तान को चरमपंथ के खात्मे के लिए सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही गृह मंत्री पाकिस्तान के बारे में अपनी राय जताना भी नहीं भूले।
भारत ही नहीं, सारी दुनिया इस हकीकत को जानती है कि आतंकवाद के लिए जिम्मेदार कौन है। और बराबर हम लोगों ने पाकिस्तान से यह अपील की है कि आतंकवाद को रोकने में वो पूरी तरह से मदद करें, क्योंकि आज पाकिस्तान को भी उसी आतंकवाद के संकट से गुजरना पड़ रहा है।
ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि कांटे को निकालने के लिए कांटे की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई और कहा कि इससे साबित हो जाता है कि भारत पाकिस्तान में चरमपंथी गतिविधियों में शामिल है। इधर कांग्रेस पार्टी ने भी रक्षा मंत्री के बयान की आलोचना की और कहा कि सरकार पर नियंत्रण किसका है इसका पता नहीं चलता। पार्टी के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा,
रक्षा मंत्री जो हैं वो इस प्रकार का बयान देते हैं जिससे पाकिस्तान भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हमसे परस्पर संबंधों में नीचा दिखा सके। हम अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और खुद रक्षा मंत्री एक बयान देते हैं और प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार रक्षा मंत्री के बयान को ही खारिज कर देते हैं। सरकार चला कौन रहा है ये खुद को मोदी सरकार को मालूम नहीं।
कांग्रेस पार्टी के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला बता रहे थे कि क्या दिक्कत है उन्हें सरकार के बयानों पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस कार्यकाल में सरकार अपने कामकाज के साथ ही पार्टी के भीतर और बाहर विवादों से भी जूझती रही है। बिजली पानी के बिल घटाने और भ्रष्टाचार पर रोक की दिशा में कदम उठाकर सरकार ने कुछ तारीफ बटोरी है, लेकिन लोगों का कहना है कि बड़े वादे पूरे करने के लिए अभी कुछ बहुत कुछ किया नहीं गया है। विवादों के कारण भी उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ा है। मौजूदा समय में दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच चल रही खींचतान से कुछ अजीब से हालात पैदा हुए हैं और अभी तक इसे सुलझाने की दिशा में कोई गंभीर प्रयास होता नहीं दिखा है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जानकारी दी गई कि सरकार विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसमें खासतौर से इस मुद्दे पर चर्चा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने कहा,
दिल्ली की चुनी हुई सरकार दिल्ली के लोगों के प्रति पूरी हमारी जवाबदारी है। हम 70 पॉइंट प्रोग्राम लेकर दिल्ली के लोगों में गए, उस पे हमें मोहर लगी, पूर्ण बहुमत के साथ हम आए हैं। जनता से किए गए किसी भी वायदे से हम किसी भी तरह का कोई भी समझौता, कोई भी हस्तक्षेप, इस तरह के नोटिफिकेशन असंवैधानिक तरीके से जो की जा रही है सरकार को एलजी के माध्यम से चलाने की, बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। और दो दिन चर्चा होगी सत्र में, सब सामने आएगा।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि उपराज्यपाल के रुख से दिल्ली के विधायकों को काफी निराशा हुई है। पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने इस बारे में कहा,
चुने हुए विधायकों को और चुनी हुई विधानसभा के कुछ मूलभूत अधिकार हैं जो संविधान ने विधानसभा को दिए हैं, सिर्फ लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इन चीजों के अंदर एलजी को हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जितने भी मुद्दे हैं वो उनके अधिकार दिल्ली की विधानसभा के पास है। और जिस तरीके से ये जो अतिक्रमण हो रहा है, जिसको कहते हैं एनक्रोचमेंट हो रहा है दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा के अधिकारों के साथ, उसको हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है और उसी की डिस्कशन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया है।
ये थे सौरभ भारद्वाज। और आम आदमी पार्टी के 100 दिन के कामकाज का हम आकलन करेंगे दिन भर के दूसरे अंक में।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर का पहला अंक और मैं हूं निखिल रंजन। तेज तर्रार पुलिस अधिकारी से समाज सेवा और फिर राजनीति में छोटी लेकिन बिल्कुल नाकाम पारी किरण बेदी के हिस्से आई है। किरण बेदी लंबे समय तक भारत में एक बदलाव, एक उम्मीद जगाने वाली शख्सियत रही है। हालांकि उनकी राजनीति में प्रवेश और नाकामी से बहुतों को निराशा भी हुई। किरण बेदी जब बीबीसी के दफ्तर आईं तो हमारे सहयोगी राजेश जोशी ने उनसे लंबी बातचीत की और इस दौरान देश की राजनीति से लेकर उनके कामकाज और विचारों पर खूब चर्चा हुई। आज संडे दिनभर में आपको यही बातचीत हम सुनवा रहे हैं। किरण बेदी ने इस दौरान बीबीसी से अपने लंबे जुड़ाव को भी बड़ी शिद्दत से याद किया।
नमस्कार, संडे दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विदित। आज हमारे साथ हैं पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट और एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर किरण बेदी। किरण बेदी पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थीं। उनसे ये खास बातचीत की बीबीसी के राजेश जोशी ने। आइए इस बातचीत को शुरू करते हैं।
किरण बेदी पुराने जमाने से बीबीसी हिंदी रेडियो से जुड़ी रही हैं। कैसे जुड़ी रही हैं ये वो खुद आपको बताएंगी। किरण जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बीबीसी हिंदी रेडियो से आपकी कितनी पुरानी जान पहचान है?
स्कूल के टाइम से। अच्छा। स्कूल गर्ल थी और मेरे पिताजी रेडियो बीबीसी मुझे सुनवाते थे। कोई टेलीविजन नहीं होता था ना दोनों में, तो हम लोग रेडियो बीबीसी सुनते थे और रेडियो हिंदी बीबीसी तो मॉर्निंग टाइम मेरे लिए। और आजकल की धुन मुझे अभी भी याद है।
अच्छा, वो धुन आपके कानों में है जी?
हाँ, आजकल चलता था, याद है?
वाह, क्या बात
तो
है।
सुबह का टाइम फिर 7 बजे का मुझे बड़ा सूट करता था, क्योंकि तब वो टेलीविजन आपको डाइवर्ट नहीं करता था ना।
अब पॉलिटिकल लीडर भी हैं, राजनीति में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो को क्यों चुना मन की बात कहने के लिए?
मैं बहुत खुश हूँ क्यों चुना, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि अपना एक्सपीरियंस। पिछले साल मैं माउंट कैलाश यात्रा में गई, उस दिन 15 अगस्त थी, इंडो चाइना बॉर्डर पे थी मैं। और मेरे जैसा व्यक्ति कभी 15 अगस्त का झंडा लहराया, जनगण मन सुने बिना रह सकता है? कभी भी नहीं। और फिर प्रधानमंत्री जी की स्पीच के बिना रह सकता है? नहीं।
चाहे कोई भी प्रधानमंत्री जी,
वो मेरे प्रधानमंत्री है, मेरे देश के प्रधानमंत्री है। मैं जानना चाहती हूँ मेरे प्रधानमंत्री जी आप क्या कहते हैं। तो कैन यू बिलीव इट, मैं अपना रेडियो साथ लेके गई थी। एक तो मैं अपनी न्यूज भी सुनना चाहती थी, मैं रेडियो साथ में लेके गई और मैंने रेडियो सुना उस दिन बॉर्डर पे। कोई टेलीविजन हो सकता था? सिर्फ रेडियो की कमाल थी। चाइना, इंडो चाइना के बॉर्डर के पीक पे मैं चढ़, मैं उस वक्त 13,000 फीट में थी उस चढ़ाई पर। मैंने और सदगुरु ने दोनों ने रेडियो लगा के मोदी जी की स्पीच सुनी। और जब जनगण मन बोला गया तो हम दोनों खड़े होकर जनगण मन गाया, और भी मेरे हिंदुस्तानी जो साथी थे सबने टेंशन करके जनगण मन, हमने 15 अगस्त मनाई। मैं अगर इलेक्ट होती तो मैं हर महीने दिल की बात करूंगी। दिल की बात में जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स हुए हैं मैं उसको एनालाइज करूंगी एज अ कैंडिडेट। आपके लिए अगर ये जिम्मेवारी मिलती, एनालाइज करूंगी लोगों के लिए कि अपराध क्यों हुआ, क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन की दिल की बात करेगी।
किरण जी, आपने अभी कहा कि जिम्मेदारी अगर आपको मिलती मुख्यमंत्री की तो आप उसका इस्तेमाल करती हैं। अब ये जनतंत्र है, जिम्मेदारी नहीं मिली और आपने उसको बहुत ग्रेसफुली और बहुत डिग्निटी से उस वर्डिक्ट को स्वीकार किया। अब जब आप राजनीति में हैं लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं है तो इन दिनों आप करती क्या हैं, ये बताइए।
नहीं नहीं, देखो आप समझने की कोशिश करो कि मैं राजनीति में आई कैसे। उस वक्त सिर्फ 20 दिन बचे थे इलेक्शंस के लिए और मुझे एक तरह का इनविटेशन मिला कि आप सोशल वर्क को एक्सपैंड करोगी अपना। किरण तुम दायरे में हो, अपनी संस्थाएं चलाती हो, गरीब बच्चों को हजारों को पढ़ाती हो, क्या इस दायरे को और बढ़ाओगी ताकि इम्पैक्ट और बढ़े। ये ऐसी कॉल थी जो मेरे जैसा व्यक्ति ना कैसे करे। मुझे पता था इसका मीनिंग क्या है लेकिन मैंने ना नहीं की। चुनौती से सिर्फ 3 हफ्ते की बात थी, उस 3 हफ्ते में मैंने वो चुनौती कबूल करी। वो कामयाब, वो जीत में नहीं लेके गई वो अलग बात है, मेरे पास तो ऑलरेडी काम था, मैं तो सोशल सर्विस में हूँ।
नहीं वो मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ
मगर मैं पॉलिटिकिंग में नहीं हूँ।
हाँ नहीं, मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि आप आजकल अगर वो जिम्मेदारी मिलती तो आप ये करती। हाँ। और आजकल आपके पास वो जिम्मेदारी नहीं है मुख्यमंत्री के तौर पे, बाकी आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां तो हैं, वो तो आपके पास बदस्तूर हैं, लेकिन राजनीति में आप क्या कर रही हैं ये लोग जानना चाहेंगे।
मेरे लिए सोशल वर्क एक राजनीति, देखो मैं एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट भी रही हूँ, दिस इज ऑल्सो बींग अ पार्ट ऑफ अलर्ट पोलिटिकल सिटीजन, जिस पर मैं लिखती हूँ, कमेंट करती हूँ और अपने स्टेटमेंट देती हूँ, चाहे वो प्रो एर अगेंस्ट, उसे नहीं। आई एम बैक टू माई एनलाइटेंड सिटीजनशिप और एंगेज सिटीजनशिप, जो एंगेज रहता है अपने देश के इश्यूज पर। लेकिन मैं राजनीति का वो ना मेरे रगों में है और ना ही मैं कर सकूंगी। मेरे लिए इंडिया फर्स्ट है, चाहे कोई भी हो। सो इसलिए आई एम बैक टू माई ओरिजिनल सेल्फ, बट मैं अपनी पब्लिक सर्विस से उसी प्रकार जुड़ी हुई, पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, विदेशों में जाके, और मैं बहुत सारी लीडरशिप इंस्टीट्यूशंस की फैकल्टी पे हूँ, मैं जाके पढ़ाती हूँ। सो मैं एक टीचर भी हूँ, एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ। सो जो वो रोल्स हैं वो वापस हूँ। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं जंतर मंतर पे जाके हाय हाय करूँ, वो मेरी नेचर में नहीं है, मैं वो नहीं कर सकती।
तो भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई जलसा हो रहा है या उसमें आप शामिल उस तरह से नहीं होती, आप सदस्य तो भारतीय जनता पार्टी की हैं।
मैं मेंबरशिप बिल्कुल हूँ लेकिन मैं उस वो तरीके की राजनीति में नहीं हूँ,
सड़क में उतरने वाली और वो धरना प्रदर्शन।
मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में थी, वो इशू आई थिंक हर चीज सिचुएशन का जवाब देता है, आप एक ढांचे में नहीं डाल सकते। और मैं ऑथेंटिक रहना चाहती हूँ, मैं वो ही हूँ जो मैं अंदर से हूँ, आई एम इनसाइड आउट, दैट इज द पर्सन आई एम, मैं दूसरा नहीं कुछ बनना चाहती।
एक और सवाल मैं आपसे इसी राजनीति के विषय पे करूंगा, उसके बाद फिर हम विषय परिवर्तन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे आप कितनी सहमत हैं?
इस वक्त जिस तरीके से वो इस देश को बदलने की दृढ़ निश्चय दिखा रहे हैं, ये बहुत करेक्ट है। आज आपको GST मिल रहा है, जो लैंड बिल को अगर ध्यान से समझें तो उसमें समझाएगा कि ये कल के लिए है, आज कुछ देना है कल कुछ पाना है। लेकिन वो कह रहे हैं ये मेरा कल था वही मेरा आज रहे, मैं कल से डर रहा हूँ। सो सवाल उठता है कौन समझाएगा। सो इस वक्त ये जो आज मेरी नजर में ये जो पॉलिसीज लेके जा रहे, क्योंकि मैं बड़ी क्लोजली इनको सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ, और अगर मेरी नजर में नहीं ठीक होती तो मैं नहीं सपोर्ट कर सकती। इसलिए दूरंदेशी की राजनीति इस वक्त, और भूतकाल को स्वच्छ करने की राजनीति। एक भी स्कैम आया 11 महीने हो गए, करप्शन स्कैम एक भी नहीं आया। नहीं तो उस वक्त याद है इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हर दिन रोज टेलीविजन, आज जैसे शोर है ना, तब रोज नया स्कैम, ये भी निकला। बहुत एम्बैरेसिंग था। सिचुएशन में काफी बदलाव आया है, बहुत कुछ सुधारने को है, बहुत दूर तक जाना है। लेकिन आगे की जो सालों की राजनीति है, या हम बच जाएंगे या बहुत बिगड़ जाएंगे। किस तरीके का डेफिसिट हमारा न्यूट्रलाइज हो रहा है, नेचर ने साथ दिया अलग बात है। सो मैं समझती हूँ वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हमको इम्पेशेंस नहीं दिखानी। इस वक्त क्या है, इम्पेशेंस भी हो रही है, और इस वक्त कोई भी एक इशू निकल रहा है, छोटा है या बड़ा है, उसको ऐसे हम लोग उभार रहे हैं कि हर चीज को रोक ली जाए, मैं या तुम, ये नहीं हम, मैं या तुम की जो राजनीति हो रही है इस वक्त, हम की राजनीति नहीं हो रही। सो एनीवे, ये राजनीति है।
आपने भूमि अधिग्रहण कानून की बात की, आपने भारत को बदलने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है उसकी बात की, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की पार्टी माना जाता है, हिंदुत्व विचारधारा से आपका कितनी सहमति आपकी है?
ये हिंदुत्व नहीं है, हिंदू है, और हिंदू इज कमिंग फ्रॉम इंदू, सो इट्स नॉट हिंदुत्व, दैट इज वेयर इट इज ऑल्सो मीडिया क्रिएशन। मेरे लिए हिंदुत्व मीन्स इंक्लूसिव, हिंदू मेरे लिए सब कुछ इंक्लूसिव है। मैं हिंदू हूँ, क्रिश्चियन स्कूल की पढ़ी हूँ और सिख मेरी फैमिली थी नाना दादी की और मेरे डैडी हिंदू थे। मैं कौन हूँ? मैं भारतीय हूँ। ये भारतीयता है जिसको आप हिंदुत्व कह रहे हो, मैं कहूंगी भारतीय।
मैं नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सभी हिंदुत्व कहते हैं।
मैं एज अ मेंबर ऑफ द बीजेपी, मेरे लिए इंडिया, मेरा धर्म इंडिया, मेरा कर्म इंडिया, मेरा सपना इंडिया, ये मेजोरिटी इंडियंस यही सोचते हैं।
ये जो मुसलमानों के अपीजमेंट की बात होती है और भारतीय जनता पार्टी कहती है मुसलमानों का अपीजमेंट होता है, उससे किस हद तक आप सहमत हैं?
कुछ चीजें तो मैंने अपनी आंखों से देखी, कौन क्या करता है। उन 3 हफ्तों में मेरी आंखें खूब खुली हैं, सो बहुत कुछ देखा है। लेकिन उसके लिए
3 हफ्ते मतलब इलेक्शन के दौरान,
हाँ, किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति हर एक कोई करता है, इसलिए मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो मेरे बस की नहीं है, ना ही मुझे पसंद है और ना ही मुझे करनी है। इसलिए मैंने जन्म नहीं लिया है, मैं तो जोड़ने वाली हूँ, तोड़ने वाली नहीं हूँ। लेकिन वो हर एक कोई करता आया है, इसी को तो बदलना है। इसलिए जितना हमारी यूथ इंडिया का एजुकेट होगा, उतना वो समझ जाएगा कि कौन मुझे इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त समझना आने वाली यूथ जनरेशन को।
अगर आपको फिर से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी देती है, तो आपने कहा कि वो राजनीति मेरा मतलब आपको पसंद नहीं आती है, तो आप उस जिम्मेदारी को आप स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी?
डिपेंड्स करता है क्या देगी, क्या देगी और क्या मैं उसके लिए कितनी कम्फर्टेबल हूँ और क्या मैं उसमें ऑथेंटिक हूँ, क्या मैं नेचुरल हूँ। अगर मैं नेचुरल हूँ तो मेरे लिए इंडिया फर्स्ट है, नेचुरल नहीं हूँ तो मैं बदलूंगी नहीं अपने आप को, मैं नहीं बदल सकती।
पार्टी की तरफ से दबाव नहीं,
तो फिर धन्यवाद कर दूंगी, कोई बात नहीं। लेकिन
ये बहुत स्पष्ट बात आपने कही कि अगर आपको बदलने की जरूरत पड़ेगी और आप उसमें बहुत कम्फर्टेबल नहीं होंगी
तो मैं नहीं,
तो आप पार्टी से भी कह देंगी?
बिल्कुल कहूंगी। आपने मुझे इज्जत मान दिया, आफ्टर उस वक्त इज्जत मान से बुलाया था और कहा था कि तुम अपने सोशल वर्क को बढ़ा नहीं सकती। अरे मैं क्यों कहूँ नहीं बढ़ा सकती? उन्होंने कहा तुम इतने दायरे में काम करती हो किरण, इतने दायरे, बड़े दायरे में काम करोगी जिसका असर ज्यादा होगा।
ये बताइए डॉक्टर बेदी कि उस वक्त आपका एक, अभी भी है, उस वक्त भी आपका एक समाज में एक असर है, लोग आपकी तरफ देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त मालूम था कि वो बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली में। आपको उन्होंने एक गिनी पिग की तरह इस्तेमाल नहीं किया?
मुझे उन्होंने हरवाने के लिए नहीं बुलाया था, मुझे उन्होंने ये कहा था कि शायद इससे हम लोग एक और नया एक ऊर्जा ऐड कर दें। लेकिन उस समय बहुत कम था, बहुत समय कम था हर चीज के लिए। तो लेकिन किस तरीके का विश्वास मुझे उन्होंने मेरे में विश्वास प्रकट किया, मैं उसकी बड़ी कदर करती हूँ।
आप उस विश्वास की बिल्कुल आउटसाइडर, आप उस विश्वास की तो कदर की आपने, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल, वो अन्ना हजारे तो खैर नहीं थे उसमें, अरविंद केजरीवाल जो आपके, जैसे एक अंग्रेजी का जुमला अगर हम इस्तेमाल करें, कॉमरेड इन आर्म्स, वो अरविंद केजरीवाल होते थे, प्रशांत भूषण होते थे, उन पर आपको भरोसा नहीं रहा? भारतीय जनता पार्टी ने आपको बुलाया, उन पर आपको ज्यादा भरोसा हुआ?
टाइम में दोनों में बहुत फर्क है ना। जब 2010 और 2011 में था तब हम एक आवाज थी, एक लक्ष्य के लिए।
मैंने खुद देखा है आपको,
लोकपाल की मांग थी
जी, प्रशांत भूषण के घर पे मीटिंग्स आपकी होती थी,
लोकपाल की मांग थी और वो लोकपाल जाके पूरी हुई 2012 दिसंबर में। लेकिन नवंबर तक तो ये दूसरे लोग तो अपनी पार्टी बना चुके थे, मैं अन्ना और मैं दोनों जने फिर अनशन पे बैठे थे ताकि हमें लोकपाल मिले। लोकपाल मिल गया दिसंबर में, लोकपाल मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, जिस मकसद के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे मेरा लक्ष्य पूरा हो गया वो है। लेकिन उसके बाद स्थिति जो बदली, जो स्थिति दिल्ली की आई, अस्थिरता आई, पूरी एजिटेशनल अप्रोच आई, कन्फ्रंटेशनल अप्रोच आई, उस वक्त जरूरत थी दिल्ली राजधानी को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जोड़ना, ताकि अगर दिल्ली में सरकार भी बीजेपी की आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी है, तो दिल्ली को सब कुछ मिलता है, क्योंकि कन्फ्रंटेशन खत्म। सो उस कड़ी में लाने के लिए मुझे बुलाया गया कि तुम कड़ी बन सकती हो, ताकि हम लोग अगर जीत गए तो एक कड़ी बन गई, मैं प्रशासन एक्सपीरियंस दूंगी, पार्टी खुद चलाएगी।
बहुत सारी चीजें बदलती हैं, लेकिन डॉक्टर बेदी लोगों के अलायंस बदलते हैं। आखिर दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें अरविंद केजरीवाल के नाम पे उनको दी, आम आदमी पार्टी को दी। आप क्या सब कुछ पिछला भुला करके अरविंद केजरीवाल से हाथ नहीं मिला सकती हैं? मैं एक बहुत वैसा सवाल पूछ
नहीं, नहीं, वो मूवमेंट है, ये पार्टी है, बहुत फर्क
पार्टी
है।
में तो आप गई थी
नहीं
ना?
बहुत फर्क है, मैंने तो पार्टी के में से भी कह रही हूँ, मुझे पुल पॉलिटिक्स नहीं, मेरी नेचर तो पार्टी में से भी, विद इन पार्टी मैं सोशल वर्क से जुड़ना चाहती हूँ या प्रशासन से ही जुड़ना चाहती हूँ, ना कि पॉलिटिक्स, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता।
अब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी
वाला, नो पॉलिटिक्स फॉर मी प्लीज, नो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, नो पार्टी पॉलिटिक्स।
तो आप बीजेपी
पार्टी, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस चाहते हो तो मेरे पास है, वो तो मेरी सेकंड नेचर है, लेकिन पार्टी के लिए नहीं, सवाल ही नहीं उठता।
तो ये थी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। राजेश जोशी के साथ हुई उनकी इस बातचीत पर अगर आप अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003 पर।
किरण बेदी से ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर का पहला अंक और मैं हूं निखिल रंजन। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया है। भारी गर्मी से लोग खासे परेशान हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कम से कम 3 दिन तक राहत के कोई आसार नहीं है क्योंकि तापमान में कमी नहीं होगी। सबसे ज्यादा परेशान हैं सैलानी जो गर्मी की छुट्टियों में सैर के लिए निकले हैं। दिल्ली की गर्मी से यहाँ के लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन उन लोगों का क्या जो छुट्टी मनाने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है।
बहुत ज्यादा गर्मी है सर, बहुत ज्यादा हालत खराब है। ठंडा पानी पी गए या लस्सी वस्सी कुछ पी गए, बस टाइम पास हो रहा है। जैसे एक गर्म हवा चल रही है बहुत ज्यादा।
हम हिमाचल से हैं, दैट्स अ कोल्ड प्लेस, तो बहुत गर्मी है यहाँ पे। और टीवी में देखते थे, अब पता लग रहा है गर्मी कितनी है।
और यहाँ पे एक हिमाचली के लिए सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। निकलती नहीं हूँ दोपहर में निकलती नहीं हूँ मैं, तो ज्यादा पानी पीती हूँ, ठंडा पानी।
गर्मी तो दिल्ली में बहुत बढ़ गई है आजकल, और इसके लिए प्रिकॉशन मैं ले रहा हूँ, जैसे पानी की बोतल रख लेता हूँ बैग वगैरह में। ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बसों का, जैसे एसी बस में ज्यादा जा रहे हैं, इसमें एसी वगैरह मेट्रो वगैरह यूज कर रहे हैं।
हरियाली रहेगी, जमीन प्रॉपर रहेगी तो इतना गर्मी का असर नहीं था। आज से 15-20 साल पहले ऐसा कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ जो अभी हो रहा है।
दिल्ली की गर्मी से परेशान हैं सैलानी और यहाँ के स्थानीय लोग भी। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। आदेश जी हाजिर हैं स्टूडियो में, बताइए आज क्या है खेलों में।
जी देखिए, अगर फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो रॉजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के दूसरी वरीयता हासिल खिलाड़ी, उन्होंने अलेक्जेंड्रो फाला कोलंबिया के खिलाड़ी को 6-3, 6-3, 6-4 से मात दी पहले दौर में। और 8वीं वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के स्टीन वावरिंका ने उज्बेकिस्तान के मर्सिल इल्हान को 6-3, 6-2, 6-3 से मात दी। एक अन्य मुकाबले में जर्मनी के फिलिप कोहल श्राइबर ने जापान के गो सोयदा को 6-1, 6-0, 6-2 से हराया। अगर महिला एकल वर्ग के मुकाबलों की बात की जाए तो रोमानिया की तीसरी वरीयता हासिल सिमोना हालेप ने रूस की एवगेनिया रोडिना को 7-5, 6-4 से हराया। उधर रूस की ही एकेटेरिना माकारोवा ने लुइसा चिरी को, जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं, 6-4, 6-2 से मात दी। और आज सबकी निगाहें हैं आईपीएल 8 के फाइनल मुकाबले पर, जहां कोलकाता के ईडन गार्डन्स में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने हैं। खबर यह है कि वहां चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, और सबकी निगाहें इस महामुकाबले पर टिकी हुई हैं।
थोड़ा ये बताइए कि किसके आसार हैं जीतने के।
देखिए, अभी से तो कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब पहले क्वालिफायर में दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, तब मुंबई इंडियंस ने चेन्नई को 25 रन से मात दी थी। अब देखना ये होगा कि चेन्नई की टीम पलटवार करती है या फिर कैसा खेल दिखाती है। लेकिन पिछले मुकाबले में जब इनके सामने बेंगलोर के खिलाफ जीत के लिए केवल 140 रनों का लक्ष्य था, तब आखिरी गेंद पर इन्हें जीत नसीब हुई थी। वैसे क्रिकेट में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन चेन्नई को अगर मुंबई से पार पाना है तो काफ़ी मेहनत करनी होगी। उधर अगर जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे 2020 मुकाबले की बात की जाए तो वहां पर जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। थोड़ी देर पहले उनका स्कोर 4 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 33 रन था, यानी अच्छी शुरुआत की है।
बहुत शुक्रिया आदेश जी, और अब चलते चलते सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। अभी अभी खबर आ रही है कि नोबेल विजेता गणितज्ञ जॉन नैश की अमेरिका के न्यू जर्सी में कार हादसे में मौत हो गई है। उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म ए ब्यूटीफुल माइंड को ऑस्कर भी प्राप्त हुआ था। वो 86 साल के थे। नैश को 1994 में उनके अर्थशास्त्र की गेम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। कार हादसे में उनकी बीवी अलीसिया की भी मौत हो गई है। पश्चिम नेपाल में भूस्खलन के बाद हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भूस्खलन के कारण काली गंडकी नदी रुक गई है, जिससे वहां एक गहरी झील बन गई है। अधिकारियों का कहना है कि पानी का स्तर 200 मीटर तक चढ़ गया है। नेपाल में 25 अप्रैल को आए विनाशकारी भूकंप के बाद बार बार भूस्खलन हो रहा है। भूकंप में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लाखों लोग बेघर बार हो गए थे। मलेशिया में बहुत सारी सामूहिक कब्रें मिली हैं, जिनके बारे में समझा जा रहा है कि ये बांग्लादेश और म्यांमार से भागे हुए लोगों की हो सकती हैं। ये कब्रें मलेशिया और थाईलैंड की सीमा के करीब वैसे इलाकों में मिली हैं जहां मानव तस्कर अस्थायी कैंप लगाते हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे फैसल मोहम्मद अली। दिनभर के पहले अंक में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद। पूरी टीम के साथ निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।